जरा एक पल के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए। आप सुबह अपने घर से निकलते हैं और अचानक आपका पड़ोसी आपको देखकर रास्ता बदल लेता है।
मतलब वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है।
बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आप बाजार जाते हैं तो पुराना दुकानदार आपको सामान देने से मना कर देता है। जिन दोस्तों के साथ आप कल तक उठते बैठते थे, वे अब आपको अपनी दावतों में नहीं बुलाते।
बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब और डरावनी स्थिति है।
है ना? और मजे की बात यह है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब आपने कोई अपराध नहीं किया है। बस हुआ यह है कि आपने उस समाज के कुछ अलिखित नियमों को, उनकी कुछ पुरानी परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया है।
अच्छा।
और इसके बदले में आपको एक खौफनाक सजा मिल रही है, पूर्ण सामाजिक बहिष्कार।
असल में ये जो स्थिति आपने बताई, ये इंसानी मनोविज्ञान के नजरिए से किसी भयानक सदमे से कम नहीं है। मैं तो कहूंगी कि ये बहुत गहरा असर डालती है।
हाँ, मानसिक रूप से तोड़ देती है।
बिल्कुल। हम इंसान बुनियादी तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन काल से ही अपने कबीले या अपने समूह से बाहर निकाल दिया जाना एक तरह से मौत की सजा के बराबर माना जाता था,
क्योंकि उस समय जंगल में अकेले कोई सरवाइव नहीं कर सकता था।
एकदम सही। आज भी भले ही हम कबीलों में नहीं रहते, लेकिन हमारी पहचान, हमारी सुरक्षा और हमारी दिमागी शांति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा समाज हमें कैसे देखता है। समाज से कट जाना आज भी हमें अंदर से तोड़ देता है।
और ठीक इसी खौफनाक सामाजिक बहिष्कार पर आज का हमारे ये गहरा विश्लेषण आधारित है। आज हम डॉक्टर डेविड डी सिल्वा के एक बेहद दिलचस्प व्याख्यान द कल्चरल वर्ल्ड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट के उन पन्नों को खंगालेंगे जो हमें सीधे प्रथम सदी की रोमन दुनिया में ले जाते हैं।
ये स्रोत सच में बहुत गहराई वाली जानकारी देता है।
हाँ, और हमारा मुख्य फोकस बाइबल के नए नियम की एक खास किताब 1 पीटर पर होगा। ये असल में एक खत था जो उन शुरुआती ईसाइयों को लिखा गया था जो पूरे एशिया माइनर में फैले हुए थे और भयानक सामाजिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे।
जहां तक मुझे याद है, उस दौर में सम्मान और अपमान यानी ऑनर एंड शेम की संस्कृति बहुत हावी थी।
बिल्कुल सही। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इन शुरुआती ईसाइयों ने बाहरी समाज के इस भयानक दबाव और बहिष्कार का सामना कैसे किया, और सबसे बड़ी बात, कैसे 1 पीटर के लेखक ने इन लोगों के लिए अपमान शब्द की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख दिया।
ये विषय सच में बहुत रोमांचक है, क्योंकि जब हम डॉक्टर डी सिल्वा के इस स्रोत को ध्यान से देखते हैं तो ये सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं रह जाता।
तो और क्या बन जाता है ये?
इस सांचे में ढालने के लिए शर्म या अपमान का हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, ये उसकी एक मास्टर क्लास है।
वाओ। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या की जड़ में चलते हैं। बीमारी को समझे बिना इलाज समझ नहीं आएगा। डॉक्टर डी सिल्वा के स्रोत के अनुसार, जब इन पहली सदी के लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया तो उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई थी।
हाँ, मतलब उन्होंने पुरानी तौर तरीके छोड़ दिए थे।
बिल्कुल। उन्होंने रोमन देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया, और बात सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं थी। वे शहर के बड़े बड़े आयोजनों, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों की निजी दावतों में भी जाना बंद कर चुके थे।
और इसका एक बहुत बड़ा कारण था, है ना?
हाँ, कारण ये था कि उस समय हर छोटे बड़े आयोजन में मूर्ति पूजा शामिल होती थी। गोश्त खाने से पहले उसे देवताओं को चढ़ाया जाता था, शराब पीने से पहले देवताओं के नाम का जाम छलकाया जाता था, और शुरुआती ईसाई इन सब से खुद को दूर रखना चाहते थे।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त के रोमन समाज में धर्म कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप सिर्फ रविवार को करते हो। धर्म उनके सामाजिक ताने बाने का, उनकी अर्थव्यवस्था का और उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा था।
सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था।
बिल्कुल। उस समय रोमन शांति या पैक्स रोमाना की अवधारणा बहुत मजबूत थी। आम रोमनों का ये पक्का विश्वास था कि उनकी शांति, उनके खेतों की फसल और उनके साम्राज्य की सुरक्षा सीधे तौर पर उनके देवी देवताओं को खुश रखने पर निर्भर करती है।
मतलब अगर पड़ोस में कोई सूखा पड़ा या कोई बीमारी फैली तो लोग सीधा यही सोचेंगे कि फला व्यक्ति ने देवताओं की पूजा नहीं की, इसलिए देवता क्रोधित हो गए हैं।
एकदम सही। और शुरुआती ईसाई इस पूरी व्यवस्था को ही नकार रहे थे। वे एक नए राजा यानी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे।
तो पड़ोसियों की नजर में ये ईसाई लोग सिर्फ अलग नहीं थे।
नहीं, वे उस शांति और व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे जिस पर पूरे समाज की नींव टिकी हुई थी। पड़ोसियों को लगा कि ये लोग अपने इस नए धर्म के चक्कर में हम सब पर देवताओं का कहर बरपा देंगे।
इससे अगर हम आज की आम जिंदगी के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो सोचिए कि दोस्तों का एक बहुत पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है।
अच्छा, दिलचस्प उदाहरण है।
अचानक उस ग्रुप का एक सदस्य बिना कोई खास वजह बताए ग्रुप छोड़कर चला जाता है। वो दोस्तों की पार्टियों में आना बंद कर देता है, उनके जोक्स पर हंसना बंद कर देता है।
हाँ, और उन सभी परंपराओं का हिस्सा बनने से मना कर देता है जो उस ग्रुप की पहचान है।
बिल्कुल, पहले तो लोग हैरान होते हैं, फिर उन्हें लगता है कि शायद ये इंसान खुद को हमसे बेहतर समझने लगा है। वो जो लेफ्ट द ग्रुप वाला नोटिफिकेशन होता है ना, वो एक अजीब सी खामोशी और फिर गुस्सा पैदा करता है।
हाँ, सब सोचने लगते हैं कि इसे क्या हो गया,
और फिर ग्रुप के बाकी लोग उसे वापस पुराने ढर्रे पर लाने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं, ताने मारते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या शुरुआती ईसाई उस वक्त के सामाजिक नियमों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे?
ये व्हाट्सएप वाली एक बहुत ही सटीक तुलना है। जब कोई आपके तौर तरीकों को ठुकराता है तो वो अनजाने में ही सही आपके जीवन जीने के तरीके को गलत ठहरा रहा होता है। रोमन पड़ोसियों ने ईसाइयों के इस व्यवहार को समाज के दुश्मन के रूप में देखा।
वे अंदर से डरे हुए थे।
बिल्कुल, वे डरे हुए थे, इसलिए ईसाइयों को वापस लाइन में लाने के लिए पड़ोसियों ने अपमान का सहारा लिया। समाज शास्त्र की भाषा में इस तकनीक को डेवियंसी कंट्रोल कहते हैं।
डेवियंसी कंट्रोल, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि जो लोग समाज के सामान्य रास्ते से भटके हैं उन्हें शर्मिंदा करके वापस मुख्य धारा में लाना।
अच्छा, तो ये डेवियंसी कंट्रोल असल जिंदगी में दिखता कैसा था?
ये बहुत क्रूर था। पड़ोसी उनका सरेआम मजाक उड़ाते थे, उन पर झूठे आरोप लगाते थे कि वे इंसानों का मांस खाते हैं या समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाता था।
बाप रे, ये तो बहुत बुरा है।
हाँ, और स्थिति इतनी गंभीर थी कि जो ईसाई गुलाम थे उन्हें उनके गैर ईसाई मालिकों द्वारा बहुत बुरी तरह पीटा जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी नई मान्यताओं पर टिके हुए थे और मालिकों के देवताओं को मानने से इनकार कर रहे थे।
ये तो भयानक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दबाव था। मतलब हर तरफ से 24 घंटे ये संदेश मिल रहा था कि तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो, तुम शर्मिंदा होने लायक हो। कोई इंसान आखिर कितनी गालियां सह सकता है?
बहुत मुश्किल है।
और यहीं पर 1 पीटर के खत की भूमिका शुरू होती है। जब समाज का दबाव इतना ज्यादा था कि लोग टूटकर वापस पुराने धर्म में जाने की सोचने लगे थे, तो इस खत ने उन्हें कैसे बचाया? स्रोत बताते हैं कि इसका तरीका बहुत ही अनोखा था, ये तय करना कि आखिर आपका जज है कौन।
सही कहा, इसे स्रोत में इंसुलेशन रणनीति कहा गया है। इंसुलेशन का मतलब है खुद पर एक ऐसी परत चढ़ा लेना कि बाहर की सर्दी या गर्मी का आप पर असर न हो।
एक तरह का सुरक्षा कवच।
बिल्कुल, जब बाहर की दुनिया आपको शर्मिंदा कर रही हो तो आप खुद को उस शर्म से कैसे बचाते हैं? 1 पीटर के लेखक ने ईसाइयों को समझाया कि जो बाहरी लोग उनका अपमान कर रहे हैं वो असल में अंधेरे में जी रहे हैं।
और प्राचीन काल में अंधेरे का मतलब अज्ञानता से था, है ना?
हाँ, लेखक का सीधा सा तर्क था कि ये लोग सच्चाई जानते ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन पर फैसला सुना रहा है जिसे सच्चाई का ककहरा भी नहीं पता, तो उसकी बातों को दिल पर क्यों लेना?
यहाँ डॉक्टर डी सिल्वा के स्रोत में प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि एक ईसाई ग्रंथ को समझने के लिए ग्रीक दर्शन का सहारा लिया जा रहा है।
वो उदाहरण क्या था?
एपिक्टेटस का कहना था कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी सच्ची बात को गलत ठहराता है तो इसमें उस सच्चाई को कोई नुकसान नहीं होता, सच्चाई तो अपनी जगह अटल रहती है।
बिल्कुल,
असल में वो व्यक्ति जो बिना जाने समझे गलत फैसला सुना रहा है वो खुद को दुनिया के सामने मूर्ख साबित कर रहा होता है।
और ये उस वक्त की दुनिया का एक ऐसा साझा विचार था जो लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता था। 1 पीटर में पुराने नियम का भी एक बहुत सुंदर रूपक इस्तेमाल किया गया है।
वो पत्थर वाला रूपक?
हाँ, यीशु को एक ऐसे पत्थर के रूप में दर्शाया गया है जिसे दुनिया के इंसानों ने, यानी समाज के ठेकेदारों और बिल्डर्स ने बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया था। दुनिया की नजर में वो पत्थर किसी काम का नहीं था। लेकिन ईश्वर ने उसी पत्थर को उठाया और अपनी इमारत का सबसे मुख्य पत्थर यानी कोने का पत्थर बना दिया। तो अब यहां सोचने वाली बात यह है कि बेवकूफ कौन साबित हुआ, वो पत्थर या वे बिल्डर्स जो उस पत्थर की असली कीमत पहचान ही नहीं पाए।
ये बहुत ही गहरी बात है यार। अगर कोई मालिक एक अच्छे आचरण वाले ईसाई गुलाम को सिर्फ उसके धर्म के कारण सजा देता है तो इस स्थिति में कटघरे में वो मासूम गुलाम नहीं बल्कि वो क्रूर और अन्यायी मालिक खड़ा होता है।
बिल्कुल सही।
लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा क्रॉस प्रश्न करने दीजिए। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
जी बिल्कुल, पूछिए।
ईमानदारी से कहूं तो अगर पूरी दुनिया आपको गलत कह रही है आपको रोज गालियां पड़ रही हैं, आप बाजार नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसे में आप एक कमरे में बैठकर खुद से कहते हैं कि नहीं, मैं सही हूं और ये पूरी दुनिया मूर्ख है, तो क्या ये सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं था?
आप कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात कर रहे हैं।
हाँ, हकीकत से भागना या वो अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब।
ये बहुत ही लाजमी सवाल है और ऊपरी तौर पे देखने में ऐसा लग सकता है कि वे खुद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं।
अच्छा, तो असल बात क्या थी?
ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं था, बल्कि ये मूल्यांकन के पैमाने को पूरी तरह से बदल देना था। एक पीटर ईसाइयों से ये नहीं कह रहा था कि वे अपने खुद के बनाए नियमों से खुद को सही साबित करें, वो उनसे कह रहा था कि वे खुद का मूल्यांकन ईश्वर की नजर से करें।
मतलब उन्होंने अपना पैमाना ही बदल लिया।
बिल्कुल, उनके लिए अब उनके रोमन पड़ोसियों या रोमन गवर्नर का नजरिया मायने नहीं रखता था, बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता का नजरिया ही एकमात्र सच्ची कसौटी बन गया था। यह हकीकत से भागना नहीं था, बल्कि एक उच्च सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण था।
अगर ब्रह्मांड के सबसे बड़े जज की नजर में आप सही हैं, तो फिर नुक्कड़ पर खड़े चार लोगों की गालियां आपको कैसे छोटा कर सकती हैं? वाओ, ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है।
एकदम सही बात है।
आपका जज कौन है ये तय करना बहुत जरूरी है, लेकिन मानसिक तौर पर आलोचना को नजरअंदाज करना एक बात है, और जो वास्तविक शारीरिक और मानसिक पीड़ा उन्हें मिल रही थी, जो रोज का संघर्ष था, उसे सहना बिल्कुल अलग बात है।
हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है।
स्रोत बताते हैं कि एक पीटर ने सिर्फ उन्हें दिलासा नहीं दिया, बल्कि इस कष्ट को ही उनका नया सामान्य बना दिया।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि कैसे उन्होंने समाज से निकाले जाने के इस भयानक एहसास को एक ऐतिहासिक और पवित्र पहचान में बदल दिया। प्राचीन काल में लोगों की मानसिकता बहुत सीधी थी।
कैसी मानसिकता?
अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप बीमार हैं या गरीब हैं, तो इसका मतलब है कि देवता आपसे नाराज है, आपने जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा।
लेकिन एक पीटर ने इस पूरी सोच को ही सिरे से खारिज कर दिया।
तो उन्होंने इसे कैसे समझाया? उसने कहा कि ये जो अपमान और कष्ट तुम सह रहे हो, ये देवताओं का श्राप नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे विश्वास की अग्नि परीक्षा है। जैसे सोने को भट्टी में डालकर तपाया जाता है ताकि उसकी सारी खोट निकल जाए और वो और चमकदार बने, वैसे ही ये कष्ट तुम्हारे चरित्र को निखार रहा है।
मतलब उन्होंने दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया। स्रोत में उन्हें चुने हुए प्रवासी या रेजिडेंट एलियंस कहा गया है। ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया।
हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त पहचान थी।
वे अपने ही शहर में अपनी ही जन्मभूमि पर अजनबी हो गए थे, हाशिए पर धकेल दिए गए थे, लेकिन एक पीटर ने कहा कि कोई संयोग नहीं है और नहीं कोई दुर्भाग्य है, ये कष्ट ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
बिल्कुल, और ये सब यीशु के जीवन की तर्ज पर ही तो था।
हाँ, जरा सोचिए, यीशु का क्रूस, जो उस समय की रोमन दुनिया की नजर में एक अपराधी को दी जाने वाली सबसे खौफनाक और शर्मनाक सजा थी, दुनिया की नजर में सबसे बड़े अपमान का प्रतीक, उसे उन्होंने जीत और सम्मान का सबसे बड़ा बैज बना दिया।
यही उस खत की सबसे बड़ी ताकत थी। उसने ईसाइयों को बताया कि अगर तुम यीशु के रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हें भी वही सब सहना होगा जो उन्होंने सहा था। और इसे सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं रखा गया। वन पीटर्स इस पूरे संघर्ष को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध का रूप देता है।
ब्रह्मांडीय युद्ध, ये तो काफी बड़ा शब्द है।
हाँ, ये बताया गया कि पड़ोसियों का ये विरोध, उनके ताने, उनका बहिष्कार, ये सब सिर्फ इंसान का गुस्सा नहीं है, ये असल में शैतान की एक चाल है। शैतान को एक दहाड़ते हुए शेर की तरह बताया गया है, जो उन्हें डराकर, उनकी हिम्मत तोड़कर, उन्हें ईश्वर के मार्ग से भटकाना चाहता है।
ये तो किसी महाकाव्य जैसा फ्रेमवर्क हो गया।
बिल्कुल, जब आप अपने रोजमर्रा के संघर्ष को, अपने आस पड़ोस की गालियों को इतने बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर देखते हैं, तो आपके अंदर उस संघर्ष को सहने की अकल्पनीय ऊर्जा आ जाती है। तब आपका दर्द सिर्फ एक आम इंसान का दर्द नहीं रहता है।
वो अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे एक महान युद्ध का हिस्सा बन जाता है।
हाँ, आप खुद को एक योद्धा महसूस करने लगते हैं।
ये सच में इंसान के दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर देने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है।
वो क्या?
अगर बाहरी समाज का सम्मान अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, तो फिर इंसानी फितरत के हिसाब से उन्हें किसी नए सम्मान की जरूरत तो होगी ही, और अगर बाहरी लोग उन पर हमले कर रहे थे तो उन्हें अपने विरोधियों को पलटकर जवाब कैसे देना था?
ये बहुत अहम सवाल है। जब कोई बाहरी समाज आपसे आपकी इज्जत छीन लेता है तो आपको एक नए परिवार की जरूरत होती है। एक पीटर में ईसाइयों को बहुत ही उच्च और गरिमामयी उपाधियां दी गई हैं।
जैसे कि
उन्हें राजकीय याजक वर्ग और पवित्र राष्ट्र कहा गया है। जरा सोचिए, जो लोग कल तक गुलाम थे या जिन्हें समाज अछूत मान रहा था, उन्हें अब राजाओं और पुजारियों का दर्जा दिया जा रहा था।
ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था उनकी सोच में।
हाँ, उन्हें याद दिलाया गया कि उनका ये नया सम्मान कोई मुफ्त की चीज नहीं है, ये मसीह के बहुमूल्य लहू की कीमत चुकाकर खरीदा गया है।
जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा है तो जाहिर है सड़क पर चलने वाले बाहरी लोगों की गालियां बेमानी लगने लगती हैं। और क्योंकि वे बाहरी समाज से पूरी तरह कट चुके थे, इसलिए ईसाई समुदाय के भीतर का जो भाईचारा था वो उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा था।
बिल्कुल, ये समुदाय ही उनका नया परिवार था और इस नए परिवार के भीतर के नियम भी बहुत क्रांतिकारी थे।
हाँ यार, मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत हैरान करने वाला लगा जहां पति पत्नियों के रिश्ते के बारे में बात की गई है। पतियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे अपनी पत्नियों को सम्मान दें और उन्हें जीवन के वरदान की सह उत्तराधिकारी या बराबर की भागीदार माने।
ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, अगर हम उस दौर के समाज को देखें जहां ऊंच नीच का बहुत कड़ा सिस्टम था, जहां घर के मुखिया को अपनी पत्नी और बच्चों पर जीवन और मृत्यु तक का अधिकार होता था, वहां औरतों को बराबर का वारिस कहना, ये विचार सचमुच बहुत क्रांतिकारी था।
ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ी चोट थी। एक पीटर दिखा रहा था कि समुदाय के भीतर असली सम्मान कैसे दिया और लिया जाना चाहिए।
और विरोधियों के बारे में क्या कहा गया था?
रही बात विरोधियों को जवाब देने की, तो यहाँ डॉक्टर डी सिल्वा ईसाई प्रतिक्रिया या क्रिश्चियन रिस्पॉन्स की बात करते हैं। उस समय की रोमन और ग्रीक दुनिया पूरी तरह से चुनौती और पलटवार की संस्कृति पर चलती थी।
मतलब जैसे को तैसा?
हाँ, इसका सीधा सा नियम था, अगर कोई बाजार में आपका अपमान करे तो आपको अपना सम्मान वापस पाने के लिए उससे भी बड़ी गाली देनी होगी। ये इज्जत और बेइज्जती का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। खून का बदला खून वाले उस समाज में जहाँ इज्जत ही सब कुछ थी, ईसाइयों से क्या करने को कहा गया?
उनसे कहा गया कि वे हथियार या गालियों के बजाय दया और भलाई को अपना हथियार बनाएं।
बिल्कुल, उन्हें यीशु की तरह शांत रहना था, गाली के बदले गाली नहीं देनी थी। मुझे लगता है किसी की गाली सुनकर शांत रहना और मुस्कुराकर भलाई करना पलटकर गाली देने से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती का काम है। ये मानसिक रूप से कितना मजबूत कदम था।
ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ा साहस था। उन्हें निर्देश था कि वो बुराई के बदले भलाई करें, ताकि जो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, जो उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, वे उनके अच्छे कामों को देखकर खुद अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो जाएं।
एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट।
हाँ, साथ ही उन्हें हमेशा कोमलता और सम्मान के साथ अपने विश्वास का बचाव करने के लिए तैयार रहना था। इस कोमल प्रतिक्रिया का अंतिम उद्देश्य अपने विरोधियों को कुचलना या उन्हें हराना नहीं था,
बल्कि उनका दिल जीतना था।
एकदम सही, वे चाहते थे कि उनका अच्छा व्यवहार देखकर शायद विरोधी भी एक दिन सच्चाई के रास्ते पर आ जाए। ये एक तरह का अहिंसक प्रतिरोध था जो रोम की उस क्रूर संस्कृति के बिल्कुल उलट था।
ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि एक पीटर के लेखक को मानव मनोविज्ञान की कितनी गहरी समझ थी। अब ये सारी चर्चा सुनने में शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हम सिर्फ 2000 साल पुरानी किसी प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं।
हाँ, लोग सोच सकते हैं कि ये सब इतिहास है।
कोई सोच सकता है कि भाई रोमन्स तो कब के खत्म हो गए, आज इसका क्या काम। लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा के व्याख्यान का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि ये विषय आज के आधुनिक समाज में भी पूरी तरह से लागू होता है।
डॉक्टर डी सिल्वा बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं।
जैसे कि?
किन जगहों पर?
स्रोत के अनुसार आज भी भारत, चीन, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे गैर पश्चिमी देशों में, जहां आज भी परिवार और समाज में सम्मान और अपमान की संस्कृतियां गहराई से जड़े जमाए हुए हैं, ईसाई समुदाय या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इसी तरह के सामाजिक दबाव का सामना करते हैं।
बहिष्कार और कभी कभी तो जेल या मृत्यु तक का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, इन देशों में बहुसंख्यक संस्कृतियां आज भी उसी डेवियंसी कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिसका मकसद अल्पसंख्यक समूहों को डराकर अपने सांचे में ढालना होता है।
शोध में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि दुनिया भर के लोगों को ऐसे उत्पीड़ित समुदायों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है,
चाहे वो उनके लिए प्रार्थना के जरिए हो, आर्थिक मदद के जरिए हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए। सोचिए, जब किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति को उसके धर्म या विचारों के कारण जेल में डाल दिया जाता है, या पूरे गांव में उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाता है, तब बाहर से आने वाली कोई भी मदद उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करती है।
अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समझ में आता है कि वन पीटर की ये रणनीतियाँ सिर्फ एक धार्मिक समूह तक सीमित नहीं है।
तो ये और किसके लिए है? ये किसी भी ऐसे अल्पसंख्यक या हाशिए पर पड़े समूह के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है, जो किसी शक्तिशाली बहुसंख्यक वर्ग के भारी सामाजिक दबाव या उत्पीड़न का सामना कर रहा हो।
सही बात है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि इन उत्पीड़ित लोगों को ये एहसास दिलाना कि दुनिया भर में उनके जैसे और भी लोग हैं जो उनके संघर्ष को देख रहे हैं और उसका गहरा सम्मान करते हैं।
और यही बात उस स्थानीय बहिष्कार या कह लें कैंसल कल्चर की ताकत को तोड़ देती है। जब एक छोटे समूह को यह पता चलता है कि उनके गांव के या उनके शहर के कुछ लोग भले ही उन पर कीचड़ उछाल रहे हों, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा समुदाय उन्हें हीरो मान रहा है, तो वो स्थानीय अपमान पूरी तरह से बेअसर हो जाता है।
बिल्कुल।
एक बड़े समुदाय का सच्चा समर्थन किसी भी बाहरी बहिष्कार के असर को खत्म कर सकता है।
यही एक पीटर का सार है। ये सिखाता है कि हम अपना मूल्य, अपनी असली कीमत उन लोगों की राय से तय ना करें जो हमें और हमारे सत्य को समझ ही नहीं सकते। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से कोई आप पर थोप सके या कोई राह चलता इंसान आपसे छीन सके।
जब तक कि आप खुद अपने मन से उसे छीनने की इजाजत ना दें।
एकदम सही।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक पीटर की किताब सामाजिक बहिष्कार, डेवियंसी कंट्रोल और मानसिक दबाव के खिलाफ एक ऐतिहासिक मास्टर क्लास है। इसने शुरुआती ईसाइयों को सिखाया कि अपनी पहचान की डोर दूसरों के हाथ में देने के बजाय उसे एक ऊंचे और पवित्र सत्य से कैसे जोड़ा जाए।
ये सच में बहुत शक्तिशाली संदेश है।
बिल्कुल। जब पूरी दुनिया आपको शर्मिंदा करने पर तुली हो, तब अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए।
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर आज के दौर में विचार करना बहुत जरूरी है।
वो क्या?
अगर हम आज के डिजिटल युग की बात करें, जहां सोशल मीडिया खुद एक नई तरह की और बेहद क्रूर सम्मान और अपमान की संस्कृति बन गया है, जहां किसी भी इंसान को महज एक गलत ट्वीट या एक अलग राय रखने पर पल भर में इंटरनेट पर कैंसिल कर दिया जाता है, उसे सरे आम जलील किया जाता है।
हाँ यार, आजकल ये बहुत आम हो गया है।
आज हर कोई इस अनजान भीड़ के फैसले से डरा हुआ है। क्या वन पीटर की इस प्राचीन रणनीति से हम ये सीख सकते हैं कि इंसान की असली कीमत सोशल मीडिया पर मिलने वाले अनजान लोगों के लाइक्स या उनके नफरत भरे कमेंट से तय नहीं होती?
ये सोचने वाली बात है कि जब डिजिटल समाज किसी इंसान पर दबाव बनाता है तो उसे अपना जज किसे मानना चाहिए? अगर इंटरनेट की भीड़ के गुस्से और गालियों का जवाब नफरत या बदले से देने के बजाय शांति और गरिमा से दिया जाए।
ये बहुत बड़ा कदम होगा।
अगर इंसान अपनी पहचान की नींव को बाहर की शोर मचाती भीड़ के बजाय अपने भीतर की सच्चाई पर रखे, तो शायद आज के इस तनाव भरे डिजिटल युग में अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का इससे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हथियार और कोई नहीं हो सकता।
बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है।
अंततः बात वहीं आके रुकती है कि फैसला सुनाने वाला जज कौन है और क्या उसे सच्चाई का पता भी है। आज के इस गहरे विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।